फिरोज खान अपने समय के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक थे। कामयाब एक्टर होने के साथ साथ वो एक कामयाब डायरेक्टर भी थे। धर्मात्मा उन्हीं फिल्मों में से एक है जहां फिरोज खान ने एक्शन और डायरेक्शन दोनों ही किया था। रेखा, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, डैनी, फरीदा जलाल ऐसे कई किरदार थे इस फिल्म में। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और गीत लिखे थे इंदीवर साहब ने। फिल्म शुरू होती है, एक इंसान को फांसी की सजा होने वाली है और तभी गवर्नर साहब के पास धर्मदास यानी धर्मात्मा का फोन जाता है।
कपूर, एडीसी टू हिज एक्सेलेंसी।
मिस्टर कपूर, मैं धर्मदास बोल रहा हूँ, मुझे गवर्नर साहब से जरूरी बात करनी है।
धर्मदास जी, इस वक्त बात करना मुमकिन नहीं, वो एक बहुत जरूरी मीटिंग में है।
मिस्टर कपूर, एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। गवर्नर साहब के साथ मेरे क्या ताल्लुकात है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि मेरा टेलीफोन है।
बोलो धर्मदास, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम चंद मिनट इंतजार नहीं कर सके।
योर एक्सेलेंसी, अब से चंद मिनट बाद एक मासूम आदमी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। अचानक अभी मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि आदमी बेगुनाह है। मेरे वकील का मशवरा है कि
सेक्शन 401
के तहत एक सिर्फ आप हैं।
ये काम इतना आसान नहीं है धर्मदास। जब तक ये बात साबित न हो जाए कि अपील के वक्त ये सबूत किसी खास वजह से कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके, मैं इस केस में कुछ नहीं करूँ।
योर एक्सेलेंसी, मैं फांसी की सजा माफ करने के लिए नहीं बल्कि फांसी रुकवाने की विनती कर रहा हूँ, जब तक नए सबूतों की रोशनी में इस केस की दोबारा जांच पड़ताल न हो जाए।
धर्मदास, कोर्ट फांसी की सजा केस के हर पहलू को बारीकी से परखने के बाद देती है, जिसमें गलती का इम्कान बहुत कम होता है।
O Lord, as he stands before thee, forget all his past wrongdoing and the excesses into which angry passion.
लेकिन गवर्नर साहब, इस केस में गलती हो चुकी है।
मेरे और आपके एक लंबे अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात रह चुके हैं,
लेकिन मैंने कभी अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। अगर इस आदमी को फांसी लग गई तो ये कानून और इंसाफ के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा।
May Christ, who chose to die for you, free you from a sinful death. May he blot out all your sins and cast your lot among the saints at his right hand. Deliver the soul of thy servant, Lord, from the danger, from the bonds of life, and from every suffering.
धर्मात्मा अस्पताल में बैठा हुआ है, पुरुषोत्तम को कैंसर है। वो धर्मात्मा से जिंदगी मांगता है, पर धर्मात्मा कहता है कि वो बेबस है और माँ काली से उसकी मौत मांगता है ताकि उसे मुक्ति मिले। दरअसल पुरुषोत्तम धर्मदास का पुराना साथी है। मोना के घर अनु आती है और वो मोना के भाई रणवीर के बारे में पूछती है। पता चलता है कि रणवीर तो अफगानिस्तान में है। धर्मदास एक बुकी है जो सट्टा चलाता है, लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। वो सट्टा बाजार कारोबार का बेताज बादशाह है। अनोखे लाल और उसका भाई दोनों उसके खिलाफ चाल चलते हैं। उन दोनों भाई के दो बेटे हैं। वो दोनों बेटे भी बहुत नशा करते हैं और बहुत ही बिगड़े हुए लड़के हैं।
बिरादर, बड़े भाई धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड है ये, फ्रॉड।
धर्मात्मा अगर दिन को रात कह दे तो जनता कहेगी रात है, और अगर वो रात को दिन कह दे।
चुप है गधे के बच्चे।
एक गधा दूसरे गधे को कैसे चुप करा सकता है।
कम बात, अपने बाप को गाली देता है।
बड़े भाई,
बिरादर, गांजे की सिगरेटों ने इनका भेजा फिरा दिया है।
गांजा नहीं, शिवपुरी खाओ अंकल जी।
तू भी बोला कम बक।
चल बे नटवर, इन बुड्ढों में बैठ के कहां अपनी शाम का सत्यानाश कर रहा है। उठ।
ना जाने हराम और किस दिन हमारे घर में पैदा हुए थे।
बड़े भाई, इन बच्चों की बातों को छोड़ो और इस धर्मात्मा के बारे में सोचो। 20 साल पहले छोटा सा बुकी बन के आया था और आज सारे धंधे में कब्जा करके बैठ गया है।
बिरादर, दुश्मन को छोटा समझकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इस धर्मदास को धर्मात्मा बनने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था।
बड़े भाई, क्या वो जिंदगी भर हमारी छाती पे मूंगलता रहेगा।
नहीं बिरादर, नहीं। अनोखे लाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं ऐसा पकवान तैयार कर रहा हूँ कि अगर धर्मात्मा ने उसे जरा भी चख लिया तो बंटाधार हुआ ही समझो।
बड़े भाई, मतलब ये कि राम नाम सत्य है।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
रानी के घर के बाहर नटवर यानी अनोखे लाल का भतीजा हॉर्न बजाता है। उसके पिता रानी को रोकते हैं, मगर रानी कहती है कि नटवर एक बहुत ही नेक लड़का है, बहुत ही अच्छे ख्यालात का लड़का है और वो अपना ख्याल रख सकती है। नटवर उसे लेकर दूर समंदर के किनारे चला जाता है। वहां जाकर वो और उसका भाई दोनों मिलकर रानी की इज्जत लूट लेते हैं। रानी के पिता धर्मात्मा यानी धर्मदास के पास जाकर मदद मांगते हैं।
मुझे सिवाय इस दरवाजे के और कहीं से इंसाफ नहीं मिल सकता।
तेरे दरवाजे पर आने से पहले तुम अपना दरवाजा भूल गए हो। आज से 20 बरस पहले की वो रात याद है तुम्हें, जब मेरी बीवी और बच्चों की जान पर बनाई थी और मैं उन्हें लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आया था और तुमने उन पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए कि तुम अपने आप को एक इज्जतदार शहरी समझते थे और मुझे एक बाजारी गुंडा। उस रात भी वही लोग थे जो मेरी बीवी और बच्चों की जान लेना चाहते थे, और आज भी वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है। मैं भी उनसे अकेला ही निपटा था और तुम भी उनसे अकेले ही निपटो।
धर्मदास, मुझे उन बेड़ियों के हवाले मत करो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, सिर्फ एक तुम हो जो उनकी कमर तोड़ सकते हो।
कल तक धर्मदास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था और आज जब तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई तो तुम्हें धर्मदास याद आ गया। जिंदगी भर आंखें बंद करके रुपया कमाते रहे तुम, लेकिन कभी एक कैसे दोस्त की दोस्ती कमाने की कोशिश की जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ सके?
वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी धर्मदास, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, मैं चोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं अगर मुझे न सही, लेकिन रानी को अपनी बेटी समझकर इंसाफ की भीख दे दो धर्मात्मा।
धर्मात्मा कहता है कि वो इंसाफ दिलवाएगा। होटल में दोनों बदमाश नशा कर रहे हैं और उनका दिल डांसर पर आ जाता है। डांसर का भी वो रेप करने जाते हैं, पर तभी एक फौलादी किस्म का आदमी जो कि धर्मात्मा का बॉडीगार्ड है वहां आ जाता है, और वो ऐसा आदमी है जिस पर गोली तक का असर नहीं पड़ता। वो उन दोनों को बुरी तरह से मारता है। पुरुषोत्तम मरने वाला है, उसने सारी जिंदगी धर्मात्मा की सेवा की है। मरते वक्त वो अपने बेटे कुंदन की शादी धर्मात्मा की बेटी मोना से करवाना चाहता है। उसका कहना है कि कुंदन मोना से प्यार करता है। धर्मात्मा उसे वचन देता है कि अगर मोना भी कुंदन को पसंद करती है तो ये शादी जरूर होगी। शादी में रणवीर नहीं आएगा तो लोग क्या कहेंगे? जब ये बात धर्मात्मा की पत्नी उनसे पूछती है तो वो नाराज हो जाता है और कहता है कि उसने सब कुछ अपनी मर्जी से छोड़ा है। फ्लैशबैक में ये देखा जाता है कि बाप और बेटे में जबरदस्त कहासुनी होती है।
ये गलत है पिताजी, आप देश और कौम से गद्दारी कर रहे हैं। चोरी चाहे एक पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी है। आप आधे चोर, एक चौथाई चोर, ऐसे चोर नहीं बन सकते। या तो आप चोर हैं या एक शरीफ आदमी।
शराफत, ईमानदारी, देशभक्ति, तुमने इनके असली रूप नहीं देखे बेटे। आज से तालीम हासिल करके नए नए आए हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो।
इस दुनिया में ईमानदारी नाम है भूखे मरने का।
शराफत कहते हैं बिक जाने को, और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है जिसने जितना ऊंचा लगाया उतनी बड़ी गद्दी संभाल कर बैठ गया। इसलिए आपने ये सब उसूल दाग पर रख दिए। ईमानदारी के नाम पे आप सट्टा चलाते हैं, मटका खोलते हैं। शराफत के नाम पे गलत अकाउंट बनवा के लाखों और करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स खा जाते हैं। देशभक्ति की आड़ में दुनिया भर के जुर्म करवाते हैं, गुंडों, कातिलों, सजायाफ्ता मुजरिमों को बना देते हैं।
ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है बच्चे, दूसरी तरफ मेरे चंदे से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशालाएं और आश्रम चलते हैं जहां विद्यार्थियों को मुफ्त में तालीम दी जाती है, गरीबों और अपाहिजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, विधवाओं और अनाथों को शरण मिलती है। मेरा लफ्ज जनता के लिए पत्थर की लकीर है, लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं।
आप समझते हैं कि मटके के जरिए हजारों लाखों घर तबाह करके चंद गरीबों के मुंह में रोटी डाल दी तो आप धर्मात्मा बन गए? शहर में 100 खून करवाने के बाद 10 आदमियों के जख्मों पे मरहम रख दिया तो आप धर्मात्मा बन गए?
स्मगलिंग के जरिए देश को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाकर चंद यतीमों के आंसू पोंछ दिए तो आप धर्मात्मा बन गए? नहीं पिताजी नहीं। अगर आपकी नजरों में ये धर्म है तो भगवान जाने देश और धर्म का क्या होगा।
तुम बहक रहे हो रणवीर, जवानी के जोश में आकर ये आदर्शवाद की बातें करना आसान है, लेकिन गरीबी के नर्क से निकलकर मेरी पोजीशन तक पहुंचना नामुमकिन काम है। मैं देश के उन चंद आदमियों में से हूं जिन्होंने समाज को अपने घुटनों के नीचे दबा कर रखा है।
आप यकीनन समाज को अपने घुटने के नीचे दबा सकते हैं पिताजी, लेकिन कानून को नहीं। कोई घुटना इतना मजबूत नहीं होता जो कानून की फौलादी गिरफ्त में ना आ सके। अब भी वक्त है पिताजी, आप ये गलत काम बंद कर दीजिए इससे पहले कि कानून के बेरहम हाथ आपको दबोच लें।
कानून 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 कौन से कानून? मैं अपने लिए खुद कानून हूं, मैं रोज कानून बनाता हूं, रोज तोड़ता हूं।
बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप पिताजी, ये मत भूलिए जो लोग तलवार के जोर पर जिंदा रहते हैं एक दिन उनकी गर्दन उसी तलवार से कटती है।
रणवीर घोड़े की सवारी कर रहा है तभी एक खाना बदोश लड़की रेशमा और उसका साथी जंगूरा दिखते हैं। उस तेज तरह लड़की को देखकर रणवीर का दिल उस पे आ जाता है, मगर उसका साथी यानी जंगूरा को उससे ये बात अच्छी नहीं लगती। रणवीर घर पहुंचता है तो उसका मालिक जिन्हें वो बाबूजी कहकर बुलाता है वो बताते हैं कि वो इंडिया गए थे और उसे ये खबर देते हैं कि रणवीर की छोटी बहन मोना की शादी होने वाली है। रणवीर बहुत खुश होता है। रणवीर और बाबूजी जब खाना बदोशों की बस्ती पहुंचते हैं तो वहाँ भेड़ों की लड़ाई होती है। वहाँ शर्त लगती है जिसमें रणवीर 1000 रुपये हार जाता है और जंगूरा जीत जाता है। शाम को वहाँ एक गाने पर वही रेशमा नाचती है। जंगूरा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की बार बार रणवीर के करीब जाना चाहती है।
मेरी गलियों से लोगों की यारी बढ़ गई, मेरी गलियों से लोगों की यारी बढ़ गई, सबकी नजरों में मेरी जवानी चढ़ गई। कोई कहे दिल ले जा, 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 तुझ में अगर हिम्मत हो मुझे तू मेरे दामे
जा। अगले दिन रेशमा जंगल जाती है भेड़ बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ने। वहां जंगूरा आ जाता है और वो कहता है कि उन दोनों के बीच जो भी आएगा वो उसे जान से मार देगा। वहां रणवीर आता है और रेशमा से कहता है कि उसे बहुत पसंद करता है, पर इतने में ही जंगूरा वहां पहुंच जाता है और वो हमला कर देता है। दोनों में जानलेवा लड़ाई होती है, पर खानाबदोशों के सरदार वहां आ जाते हैं। रेशमा रणवीर को बचा लेती है, वो कहती है कि उसका कोई दोष नहीं है। शाम को जंगूरा और रेशमा में फिर एक झड़प हो जाती है। इधर रणवीर अपने घर पहुंचता है और बहन की शादी में शरीक होता है। अनु रणवीर को पाकर बहुत खुश होती है और वो अपने प्यार का इजहार करती है, पर रणवीर को लगता है कि वो एक दोस्त है और दोस्त के नाते ही वो करीब आई है। उसके बाद रणवीर फिर से अफगानिस्तान पहुंच जाता है और रणवीर रेशमा के लिए ये गाना गाता है।
तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है।
गाने के बाद रणवीर पूछता है कि वो उससे शादी करेगी। रेशमा मान जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। कबीले में एक सालाना मुकाबला होता है और उस मुकाबले को जो जीतेगा सरदार उसे मुंह मांगा इनाम देगा। जंगूरा जान पर खेलकर वो मुकाबला जीत लेता है और इनाम में वो रेशमा का हाथ मांगता है। तभी वहाँ रणवीर आके कहता है कि रेशमा पर सिर्फ उसका अधिकार है।
शाबाश जंगूरा, मांगो सरदार मुझे रेशमा का हाथ चाहिए। सरदार
सरदार रेशमा पे हक मेरा है।
ये हक तुम्हें किसने दिया?
रेशमा ने।
रेशमा।
हाँ सरदार।
हाँ? सरदार
जंगूरा जंगूरा। आ गए रोशनलाल, अगर इस नौजवान की जिंदगी चाहते हो तो इसे यहाँ से ले जाओ।
सरदार अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे यहाँ लेकर नहीं आता। आपको मेरी दोस्ती कसम, आप जरा अंदर चलिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
लेकिन सरदार रेशमा रणबीर से प्यार करती है। प्यार एक दिल का जज्बा है जो कल को बदल भी सकता है।
सरदार इस जज्बे को बदलने का हक सिर्फ मेरा है।
रेशमा तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे कबीले में औरतों को मुंह खोलने की इजाजत नहीं है।
लेकिन मैं इस कबीले की नहीं हूँ और इस कबीले का कोई कानून मुझ पर लागू नहीं होता।
बेवकूफ लड़की, तुम जबान दराजी करके अपनी मौत को आवाज दे रही हो।
आप मुझसे जिंदा रहने का हक नहीं छीन सकते सरदार। मैं एक यतीम लड़की हूँ, आपने मुझे पाल पोसकर बड़ा जरूर किया है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपने मेरी दम तोड़ती हुई माँ से वादा किया था कि आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे।
प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। इन लोगों का रहन सहन और रस्म रिवाज कोई चीज हम लोगों से नहीं मिलती। ऐसे माहौल में तुम घुट कर मर जाओगी।
और मैं इस माहौल में जीते जी मर जाऊंगी। आज आपकी यतीम बेटी छोले फैलाकर अपने प्यार की भीख मांग रही है। अगर आपने मंजूर नहीं किया तो मैं अपने आप को ढेर
दूंगी। आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी की रात को रणवीर और रेशमा की शादी करार पाई है।
कबीले की औरत जो लोगों की तकदीर बताती है वो कहती है कि अगर रेशमा रणवीर से शादी करती है तो वो रणवीर के मौत का कारण बन जाएगी। रेशमा घबरा जाती है पर रणवीर कहता है कि वो ये सब फालतू बातें नहीं मानता। धर्मात्मा के घर विक्रम सिंह जो कि धर्मात्मा का खास आदमी है उसके जरिए अनोखे लाल खबर भिजवाता है कि वो उससे मिलना चाहता है। मीटिंग फिक्स होती है जहां कुंदन को भी शामिल होने को कहा जाता है। अनोखे लाल ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कहता है और वो कहता है उसे 50 लाख रुपयों की जरूरत है जिसके बदले में वो एक साल में 10 करोड़ रुपए कमा के देगा। कुंदन बिल्कुल चौंक जाता है पर धर्मात्मा को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं होती और वो मना कर देता है। उसका कहना है कि ड्रग्स के कारण आने वाली पीढ़ी को वो बर्बाद नहीं कर सकता मगर कुंदन का व्यवहार धर्मात्मा को अच्छा नहीं लगता। विक्रम धर्मात्मा का खास आदमी है। धर्मात्मा उसे कहता है कि उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपनी बेटी की शादी कुंदन के हाथ में देकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे लगता है कि कुंदन सही आदमी नहीं है। वो विक्रम से कहता है कि रणवीर को वापस बुलाए, उसे कहे कि एक बाप को अपने बेटे की बहुत जरूरत पड़ी है। विक्रम को रास्ते से ही अनोखे लाल और उसके बेटे उठवा लेते हैं। होश में आने पर विक्रम देखता है कि अनोखे लाल के अड्डे पर कुंदन भी वहाँ मौजूद है।
घबराओ नहीं विक्रम, ये सब अपने ही आदमी हैं। ऐसे ही क्या चाहते हो तुम लोग?
बिरादर हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। तुम सिर्फ एक शर्त पर यहाँ से जिंदा जा सकते हो।
वो शर्त क्या है?
बिरादर तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो जाओ।
धर्मात्मा उम्र के साथ साथ सठिया गया है। हमारी स्कीम में जो बेहतरी कुंदन को नजर आई थी वो उस बुढ़े को नजर नहीं आई।
जरा सोचो विक्रम, अफीम की तजारत में कितना मुनाफा है। तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के कानूनी दिमाग हो। धर्मात्मा की मौत के बाद तुम कुंदन को हमारे बतलाए हुए रास्ते पर चलाओगे।
हाँ, धर्मात्मा की मौत? कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए?
बिरादर, पागल हुए बिना कभी इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता?
कभी नहीं बड़े भाई।
कल धर्मात्मा आखिरी बार मटका खोलेगा और उसके बाद मौत की आंधी उसे कब उठा ले जाएगी उसके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा।
तुम लोग खुदकशी कर रहे हो। अगर कुंदन के भरोसे भी ये कदम उठाया है तो बहुत बड़ी नादानी की है।
ये नादानी ही तो गुल खिलाएगी विक्रम जी।
विक्रम, अगर तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है तो उसे निकाल दो। धर्मात्मा की मौत अटल है।
कल ठीक 8:20 पर तुम्हारा भगवान इस दुनिया से जा चुका होगा।
लेकिन जब तक रणवीर जिंदा है कुंदन कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता। वो अपने बाप के कातिलों को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा।
अगर वो जिंदा रहेगा तब ना बाप के साथ बेटा भी ऊपर जाएगा।
समझ गए ना विक्रम जी, राम नाम सत्य है।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
प्लान के मुताबिक धर्मात्मा को गोली मार दी जाती है और बाय चांस कुंदन के कंधे पर भी एक गोली लग जाती है जिससे कोई उस पर शक ही नहीं करता। इधर इस बात से बेखबर रणवीर और रेशमा मंदिर जाते वक्त रास्ते में ये गाना गाते हैं।
क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।
नटवर और उसका भाई अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों की जीप में बम लगा देते हैं। रणवीर रेशमा से पूछता है कि उसने आज ऊपर वाले से क्या मांगा। रेशमा कहती है कि उसने रणवीर की सलामती मांगी। रणवीर पर आने वाली सारी मुसीबतें उस पर आ जाए और होता भी यही है। बदकिस्मती से रणवीर की जगह रेशमा मारी जाती है। बाबूजी रणवीर को खबर देते हैं कि उसके पिता पर भी हमला हुआ है और वो मौत से लड़ रहे हैं। रणवीर वापस जाने को तैयार नहीं तो बाबूजी कहते हैं कि रेशमा के कातिल को भी वो वहीं पाएगा। रणवीर वापस आ जाता है। यहां कुंदन को ये खबर दी जाती है कि पुलिस का सख्त पहरा है और कुंदन उसी अस्पताल में बगल वाले कमरे में है। उसे कहा जाता है कि वो उस कमरे की खिड़की से घुसकर धर्मात्मा का कत्ल कर दे। नर्स अंदर घुसती है और वो खिड़की खोल देती है। कुंदन खिड़की से घुसकर धर्मात्मा का कत्ल कर देता है पर उसकी अंगूठी धर्मात्मा के हाथ में रह जाती है। रणवीर अपने घर आता है। उसकी माँ कहती है कि उसे वापस चला जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। पर रणवीर कहता है कि क्या वो उसके बाप के कातिल को माफ कर सकती है।
माँ, पिछले 2 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया। चलो उठो, खाना खा लो।
किसी चीज को मन ही नहीं करता बेटी। उनके बिना ऐसा लगता है जैसे भरी दुनिया में हम अनाथ हो गए।
ऐसा ना कहो माँ। जब तक भगवान का हाथ इंसान के सर पे है इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं। और फिर मैं जो तुम्हारे पास आ गया हूँ रहने के लिए।
नहीं नहीं बेटी, तुम यहाँ नहीं रहोगे। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी जान खतरे में है। जो लोग तुम्हारे पिताजी की जान ले सकते हैं उनके लिए तुम कुछ भी नहीं हो।
माँ, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने पति के कातिलों को माफ कर सकती हो? बोलो माँ, माफ कर सकती हो?
नहीं, कभी नहीं।
तो फिर मेरा यहाँ रहना तय है।
डॉक्टर रणवीर से कहता है कि धर्मात्मा की मौत गला घोटने से हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही कहती है। रणवीर चौंक जाता है। वो उस नर्स के बारे में पता कर लेता है जिसने कुंदन को खबर की थी। मगर उस नर्स तक पहुंचने के पहले नटवर और उसके भाई उसे मार देते हैं। रणवीर उसकी उंगलियों में अंगूठी पहनाने की कोशिश करता है, पर उसकी उंगलियों में ये अंगूठी नहीं आती। रणवीर बहुत उदास हो जाता है। अनु उसके साथ घूमने जाती है और दोनों ये गाना गाते हैं।
तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बोलो ना। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है?
प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार का बस दीदार किया है।
तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है?
गाना खत्म होते ही कुंदन के गुंडे वहां आ जाते हैं और रणवीर को मारने की भरपूर कोशिश करते हैं, पर रणवीर सबको मार देता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। रणवीर को कुंदन बताता है कि विक्रम ने उसके पिता को मारा है और वो अनोखेलाल से मिला हुआ है। रणवीर अनोखेलाल के घर पहुंचता है। दरअसल ये एक स्कीम थी, रणवीर को वहां बुला के मारा जाए। रणवीर का कत्ल तय था, पर रणवीर वहां पहुंचते ही 50 लाख रुपए अनोखेलाल के हाथ में देता है और कहता है कि वो ड्रग डील करने को तैयार है। तो अनोखेलाल पूरी तरह से बदल जाता है और वो उसे जान से नहीं मारता। इस बात से कुंदन बहुत नाराज हो जाता है। वो कहता है अनोखेलाल ने उसे डबल क्रॉस किया है। कुंदन अपने घर आता है, वो नशे में है और एक धंधे वाली के साथ है। मोना नाराज हो जाती है। कुंदन उससे भी जबरदस्ती करता है।
अपने ये गंदे हाथ दूर रखो मुझसे।
कल तक इन्हीं हाथों को चूमा करती थी और आज ये हाथ गंदे हो गए हैं।
हाँ, ये हाथ गंदे हो गए हैं इसलिए कि अब ये एक वैश्य और बीदी में तमीज नहीं कर सकते। मुझे नफरत हो गई है तुमसे।
मुझे नफरत को प्यार में बदलना आता है।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
अरे इन हाथों ने अच्छे अच्छे जिस्मों को प्यार।
ये काम तो जानवर भी करते हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अगर भैया को पता चल गया ना।
मुझे भाई का डर दिखाती हो?
बुलाओ भाई को।
विक्रम को अनोखेलाल और उसके बेटे कहीं ले जाकर कत्ल कर देते हैं और रणवीर को खबर करते हैं। जब रणवीर वहां पहुंचता है और उसके हाथ में वो अंगूठी पहनाता है और वो अंगूठी उसके हाथ में भी नहीं आती, तब अनोखेलाल कहता है कि उसके बाप का कातिल वो नहीं, और ये कहकर वो रणवीर पर गोली चला देता है। गोली रणवीर के हाथ में लगती है और तभी पुलिस वहां आ जाती है और मुठभेड़ में अनोखेलाल और उसका भाई दोनों मारे जाते हैं। राखी के दिन मोना वो अंगूठी पहचान लेती है और कहती है कि ये कुंदन की अंगूठी है। उसे इस बात का पता ही नहीं कि कुंदन ने ही उसके बाप का कत्ल किया था। रणवीर सोचता है कि वो कुंदन को मारे तो कैसे, अगर वो कुंदन को मार देगा तो मोना विधवा हो जाएगी। कुंदन और मोना घर पहुंचते हैं। वहां नटवर और उसका भाई पहले से बैठे हैं। वो कुंदन से कहते हैं कि रणवीर को किसी तरह से रास्ते से हटाना पड़ेगा और मोना सब कुछ जान जाती है। रणवीर को फोन पर वो सब कुछ बताने जाती है, मगर कुंदन आकर उसका गला घोट देता है। कुंदन वहां से भाग जाता है, हेलीकॉप्टर लेकर नटवर और उसके भाई के पास पहुंचता है। वहां जाकर वो खबर देता है कि रणवीर मारा गया और उन दोनों भाइयों से पूछता है 50 लाख का जो अफीम था वो कहाँ है। अफीम का पता पाते ही कुंदन उन दोनों भाइयों को जान से मार देता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ने जाता है, वो देखता है रणवीर वहां बैठा हुआ है। रणवीर उसे बहुत मारता है और बंदूक के डर से कुंदन खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रणवीर अपनी सारी की सारी दौलत पुलिस के हवाले कर देता है। अनु और रणवीर एक हो जाते हैं। कहानी खत्म हो जाती है। दोनों कहीं से गुजरते हैं, वहीं वो काफिला दिख जाता है और रणवीर को एक बार फिर से रेशमा की याद आ जाती है।
तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, दिल डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है।